पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुं भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबंधम नमाम्यम। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें दूसरी पुस्तक में द्वितीय जो स्थिति बंधाधिकार है उसको देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 44 पर आगे 44। अभी हमें ये जो मार्गणाओं में बात स्वामित्व की देख रहे, वो भी जघन्य स्वामित्व की बात मार्गणाओं में देख रहे थे। यहाँ 61 नंबर का जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर वैक्रिय का योग में हमने इंद्रिय मार्गणा में देखा, गति मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा में जघन्य का स्वामी देखा है। अब यहाँ योग मार्गणा में देख रहे हैं वैक्रिय का योग में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? तो कहते अन्यतर देव और नार की जीव जो कि सम्य दृष्टि है। अभी सात कर्मों में जघन्य स्थितिबंध देखना है तो विशुद्ध परिणाम लेना, तो देव और नार के वैकृत का योग में लेना है तो देव और नार की जो सम्य दृष्टि है साकार जागृत है सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थितिबंध कर रहा है। हाँ, जो कर रहा है उसी को कहेंगे वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। क्योंकि आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अन्यतर देव और नारकी जीव जो कि तत्प्राय के संकलेश परिणाम वाला है। आयु में जघन्य संकलेश वाला लेना है और मिथ्या दृष्टि है वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी। इसी प्रकार वैकृत मिश्र का योग में जानना चाहिए, परंतु यहाँ आयु का बंध नहीं होगा। वैकृत मिश्र अवस्था इतनी विशेषता है कि इसमें जो तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा की बात है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी होता है। उत्कृष्ट में भी उसी को लिया था, परंतु यहाँ विशुद्धि वाला लेना। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अन्यतर प्रमत्त संयत जीव जो साकार जागृत है और सर्व विशुद्ध है वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। आहारक मिश्र का योग में जो तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अब आयु में उल्टा लेना, संकलेश वाला लेना। अन्यतर तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला जीव आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। जघन्य स्थितिबंध कितना देखा था हमने? पृथत्व पल्ले देखा था, कितना देखा था आहारक वाले के? जरा स्वामी तो ये वो आधा छेद निकालना जघन्य की। इसमें देख रहे हम योग में, हाँ आर कारक मिश्र में ट्वेंटी सेवन देख रही है। हाँ आर कारक मिश्र आयु कर्म का जगह पल्ल को यही तो मैं बता रही थी। आयु कर्म के जघन्य स्थिति बन गया, पल्ल पृथक देखा मैंने, वो संकलेश वाला करेगा इतना बन। अन्यतर तत्प्राय संकलेश परिणाम वाला जीव आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है, वो हो गया। लास्ट लाइन 44 पृष्ठ हम नीचे का पैराग्राफ लास्ट तीन लाइन, स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुसक वेद में ये वेद मार्गणा की अपेक्षा बात चले गए। सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? अभी जिस वेद वाला है उसके अपने अंतिम समय में अंतिम जो स्थिति बंध है उसको देंगे। जो अन्यतर अनिवृत्ति क्षपक जीव जघन्य स्थिति बंध कर रहा है वह सात कर्मों के जघन्य स्थित हुआ स्थिति बंध का स्वामी है। कौन सा लास्ट समय? हाँ अपने अपने वेद का अंतिम अंतर मुहूर्त, तीनों का अलग अलग लेना, अपना अपना जो अंतिम जो अंतर मुहूर्त है। आयु का बंध ये तो हाँ बंधक की बात चलेगी, परंतु वहाँ तो मरण नहीं होता, ये तो हमने पहले देखा। परंतु बंध के बारे में भी दो मत है ना इसमें।
आयु कर्म का जो भी सात कर्म का जो जगह नहीं होता है वो मिश्र का युग
मिश्र में अलग लगाया, आहार का युग में अलग लगाया,
एक प्रकार से अपर्याप्त,
क्योंकि वो तो योग के जो
बनती नहीं है।
योग जो है क्या कहते हैं, अब ये जो वेद वालों में आयु कर्म के जघन्य आपको आयु कहीं नहीं,
आयु जो है अपर्याप्त अवस्था में इनके लिए देवायु नहीं बनती।
मैंने आयु ही नहीं बनती कहना पड़ेगा ना, देवायु नहीं बनती है नहीं क्या, अन्य तो आयु सा सवाल ही नहीं है। वो तो मिथ्या दृष्टि लब्धि अपर्याप्त, समय दृष्टि तो नहीं बांधते हैं, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में भी
नहीं है, वो दूसरे मत के हिसाब से यहाँ पर जो है वो नहीं बनती।
मैंने पहले ही देखा था कि मरण नहीं होता आयु नहीं बनती, ये तो हमने एक मत देखा था पहले देखा है, यहाँ तो बंध को स्वीकारा है। पर्याप्ति पूरे करने के पहले समय शरीर पर्याप्त, तभी तक तो होगा आहारक मिश्र है, उसके बाद तो आहारक मिश्र रहता ही नहीं, अंत में हाँ यानी विशुद्धि वाले भी अंत समय में और संकलेश में भी अंत समय में, वो तो हमने पहले भी देखा। वैकृत में भी वैसे ही लिया, वैकृत मिश्र में भी ऐसा अंतिम समय में उत्कृष्ट या जघन्य हो सकता है। अब ये वेद वालों में आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी योग के समान है, योग के समान यानी वो लब्धि अपर्याप्त का भोग, उस संबंधी कर्म बंध रहा है उसका, इतनी विशेषता है स्त्री वेद और पुरुष वेद में, जो संगी हो असंगी हो पर्याप्त हो वह आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। अपर्याप्त को नहीं लिया, क्या कहा, क्यों नहीं लिया नितिन भाई, आप एकदम बराबर कह रहे हैं।
yes,
अपने हाँ भरे ना क्योंकि स्त्री वेद और पुरुष वेद है, यानी कौन से वो, यानी वो लब्धिया पर्याप्तक वाले नहीं है, क्योंकि लब्धिया पर्याप्तक वाले तो सब नपुसक वेद हो, तो उनके तो अपर्याप्त अवस्था में भी आयु बंधेगी, परंतु स्त्री वेद पुरुष वेद वाले वो नियम से पर्याप्त जीव है, पर्याप्त नाम कर्म वाले। ख्याल में दिन भर स्त्री वेद और पुरुष वेद वाले नियम से पर्याप्त और पंचेंद्रिय असंगी भी हो सकते, परंतु वो पर्याप्त जीव है, तो पर्याप्ति पूरे हुए बिना तो आयु का बंध ही नहीं कर सकते। इसलिए पर्याप्त हो कहा, अपर्याप्त अवस्था में वो उनकी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, वो नहीं करेंगे। नपुसक वेद में संगी हो असंगी हो, पर्याप्त हो अपर्याप्त हो, यहां दोनों लिए, क्योंकि नपुसक वेद में अपर्याप्त अवस्था नहीं, लब्धि अपर्याप्त वाले भी है, वो तो आयु का बंध करेंगे ही, वह आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। इस प्रकार क्रोध मान और माया कषाय में भी जानना चाहिए, क्योंकि यहां ये तो जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है, तो लोभ वाला इसलिए नहीं लिया, लोभ वाले तो दसवें तक है, और यहां क्या कथन किया था देखो, स्त्री वेद पुरुष वेद उसमें अनिवृत्ति क्षपक जीव जघन्य स्थिति बंद करता, ये क्रोधमान माया में घटित होगा, लोभ वाले के कहेंगे दसवें में होगा। समझ में ये बात, आगे बढ़ेंगे हम, ये वेद मार्गणा हो गई, कषाय मार्गणा में तीन कषायों की बात यहां बता दी। विभंग ज्ञान में ये तो लोभ की बात पहले बता चुके थे, लोग के समान हो गए संजीवन लोग की बात या लोग का शय, किसका यहाँ अन्य सात कर्मों की वहाँ छह कर्मों की होती है ना, उसमें कथन ही अलग होगा, कथन उनके लिए अलग होगा, सातों कर्मों की बात है ना। देखो हमने जब ओग की बात की थी तो उसमें लोग कषाई जू लिया, 41 पेज निकालो, अभी आयु में वो छोड़ दो, वो लोग कषाई है ना, ऊपर से सातवीं लाइन में लोग कषाई लिया, क्योंकि जिनमें वो श्रेणी होती है या दसवां गुण स्थान होता है उन मार्गणाओं को वहां इंक्लूड किया जघन्य बंध के लिए सात कर्मों को। आयु की तो अलग अलग वेरिएशंस होती है, उसकी तो बात उन्होंने अलग से बताई थी, इसलिए यहाँ तीन बता दिए उन्होंने, लोभ की बात पहले आई ही थी इसलिए कषाय मार्गणा भी यहाँ हो गई। वेद मार्गणा भी हुई, कषाय मार्गणा, उसके पहले काय मार्गणा भी हुई, योग मार्गणा भी हुई थी। अब विभंग ज्ञान में ज्ञान मार्गणा के बाद यहां चलेगी। आप कहेंगे डायरेक्ट विभंग ज्ञानी को क्यों लिया, जो अभिनिबोधित और अवधिक ज्ञान में तो दशा गुण स्थान घटित होता है, तो वहां तो वो बात आई थी, पहले लिया था उसका। तो विभंग ज्ञान में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर मनुष्य संयम के अभिमुख है। विभंग ज्ञानी सातवें में जाने के संदर्भ में, हाँ वेदक समित्व के साथ जाने वाले को हमने विशुद्धि ज्यादा है ऐसा देखा था पहले, वो उसके प्रकरण में जयधवला में देखा था। साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थिति बंध कर रहा है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है, विभंग ज्ञानियों में, जो अन्यतर तीरियां या मनुष्य साकार है, जागृत है, संकलेश परिणाम वाला है, और जगन्य आबादा के साथ जगन्य स्थिति बंध कर रहा है, वह आयु कर्म के जगन्य स्थिति बंध का स्वामी है। ये मति श्रुत ज्ञानी की यानी अज्ञानी की बात पहले हो चुकी थी ना। मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी में जगन्य स्थिति बंध हमने तीरेंचों में देखा था, जो एक इंद्रिय जीव करते हैं। अज्ञानी मति अज्ञानी में कौन होगा? एक इंद्रिय जीव। ये 43 पेज पर होगा शायद, यहाँ पर बादर करते हैं। और अन्य मार्गणा वैसे लिए ना, वहाँ पर एक इंद्रिय स्थावर काय औदारिक। हाँ हाँ, तिरेन चौंकी उसमें भी वहाँ बताए सब, मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी असंयत वगैरह वगैरह। पेज 43 पर आ गए। अब सामायिक और छेदोपस्थापना संयम में, संयम मार्गना यहाँ शुरू होती है।
एक प्रश्न,
हाँ हाँ, आपका प्रश्न पूछना।
अपन बोल रहे हैं एक से सात में जाने वाला संयम के जो है ज्ञानी का जगन्य है।
हाँ,
तो दो केस बन सकते हैं। एक तो केस है कि जो गिर के मतलब मिथ्यात माया द्रविड़ी की मुनि है, वो काफी लंबे काल तक बोले तो पल्ले के संज्ञा, तो जब तक उसका काल है मतलब वो चालू उक्षम काल चालू और वेदक काल है, उसके बाद में वो आ रहा है, लंबे काल तक मिथ्यात में रहकर फिर संयम एक से सात में आ रहा है।
वहाँ तो उसमें वो प्रदेशों में डिफरेंस होगा ना, यहाँ स्थिति बंध में बिना करण के होता है, यानी संयम से गिर कर आए और तत्काल चढ़ रहे थे।
दो करण भी कर सकता है, जा सकता है।
ये संयम मार्गना भी
देखिए,
उनका कहना है वेदक सम्यक के साथ चल रहा है, तो वेदक समय दृष्टि लंबे काल तक वेदक रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। वेदक नहीं नहीं वैसा नहीं कहना, वेदक के साथ जा रहा है ना, वो मिथ्या तो इसे वेदक करके जा रहा है, यानी सादी मिथ्या दृष्टि है। तो सादी मिथ्या दृष्टि मिथ्या तो में कितने काल से है, तो लंबे काल से, ये उनका कहना है। एक ऐसा जीव है और दूसरा ऐसा है अभी अभी संयम से गिर कर आए हैं और अभी फिर दोबारा वो प्राप्त करेगा अंतर्गत।
संयम से गिर क्या है और अंतर्गत वापस जाएगा,
उसकी विशुद्धि, उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। ये बंद की बात चल रही है, ये आप सत्ता की बात कर रहे हैं, आप सत्ता की बात कर रहे हैं। पहला हो चुका है, परंतु जब संयम के अभिमुख है तो यथायोग्य उस समय उसका स्थिति बंध कम हो रहा है, परंतु कंपेयर करेंगे दो में तब की बात चल रही है। देखो सामायिक और छेदोपस्थापना संयम में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अभी सामायिक छेदोपस्थापना और सात का जघन्य स्थितिबंध तो कैसे सोचोगे आप, कब होगा? पहले नक्की करो इन गुणस्थान कौन से है, छह से नौ, तो छठे वाले को ज्यादा हो गया कि कम होगा कि नवे वाले को कम होगा? नवे वाले कब होगा कम, शुरू में के लास्ट में, तो अभी इसमें क्या डिफिकल्ट है? देखो क्या कहते हैं, जो अन्यतर अनिवृत्ति क्षपक अंतिम जघन्य स्थिति बंद कर रहा है, अंतिम इसलिए कहा कि वो तो अंतर्मूर्त तक चलता है ना, तो अंतिम स्थिति बंद पर आ गए, वह सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंद का स्वामी है। क्योंकि हमें ओक की अपेक्षा तो दसवें के अंत में छह के लिया, परंतु यहाँ तो सामयिक छेदोपस्थापना है, वो तो बाद में तो होती नहीं उसके। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? तो जो प्रमत्त संयत जीव, आयु में उल्टा लगाना, क्योंकि देवायु बांध रहा है, तो जगन्य कब बंधेगा, जब संकलेश जाता है, तो कौन हो गया वो छठे वाला, जब मिथ्या तो के अभिमुख है तब कहेंगे। तत्प्राय जो संकलेश परिणाम वाला है वह आयु कर्म के जगन्य स्थिति बंध का स्वामी है। अभी हमने देखा था पल्ल्य पुत्र को उसकी आहार के लिए तो लिया ही था, संयत के लिए भी लिया होगा है ना, 26 पर लिया था हमने, संयत में कितना लिया था, इसी प्रकार परिहार विशुद्धि संहिता संयत वेदक समय दृष्टि एक संयतों में संयता संयत नहीं संयतों में मैंने पल्लवम पृथक को उन्होंने परिहार शुद्धि आहार वगैरह उसके लिए बताया है संयत। हाँ यहाँ 29 पर सामायिक क्षेत्रों पर स्थापना तीन कर्मों का जगन्य मूर्त पृथक पल्ल पृथक वही बात है पल्ल पृथक वही होता। अब आते हैं ओरिजिनल पेज पर अपने 45 पर परिहार विशुद्धि संयम में सात कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है। जो अप्रमत्त संयत जीव सर्व विशुद्ध है, अब वो श्रेणी के सन्मुख कहेंगे हम सर्व विशुद्ध वाला, वह सात कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी है। आयु कर्म के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी आहारक का योगी के समान है। अभी हमने जो देखा था पल्ल्य पृथक वो कौन होगा, संकलेश वाला होगा। हमने ये भी देखा था परिहार विशुद्धि से समय के अभिमुख जीव गया, सामायिक क्षेत्र को स्थापना के अभिमुख। हाँ सामायिक क्षेत्र को स्थापना उसके अभी सन्मुख देखा था। परिहार विशुद्धि को जगन्य आयु बंध कब होता है, उसकी ज्यादा संकलेश है तब, तो वो कब हो गए, तो वो परिहार विशुद्धि उसके छूट जाएगी, मुनिपना नहीं छूट रहा है, तो सामायिक क्षेत्र पर स्थापना के सन्मुख जीव लिया।
परिहार विशुद्धि ज्यादा शुद्ध है।
हाँ बिल्कुल विशुद्धि ज्यादा
है,
आपका तो ऊपर वाला है।
अच्छा,
अभी इस अवस्था में उसकी बात चल रही है, छठे सातवें की अपेक्षा। सूक्ष्म सांप्राय संयम में छह कर्म, अभी तक सात कह रहे थे, छह कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी ओघ के समान है। ये तो आसान है, संयता संयतों में सात कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है। जो अन्यतर मनुष्य संयम के अभिमुख है, मनुष्य शब्द डाला क्योंकि संयम तो उसी के हो सकता है, साकार जागृत है और सर्व विशुद्ध है, वह सात कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी है। आयु कर्म के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है, इसमें संहिता संयत में, तो संहिता संयत ने मनुष्य और तिर्यंच कौन सी आयु बांधेंगे, देवायु, देवायु ही या मत कहो कुछ ना। तो आयु कर्म के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है। जो दो गति का जीव तत्प्राय संकलेश परिणाम वाला है वह आयु कर्म के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी है। पीतलेशा पद्मलेशा में सात कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है। पीत पद्म में जब हम सात की बात करेंगे तो संयमी जीव लेंगे, जो अन्यतर अप्रमत्त संयत जीव क्योंकि यहाँ तक प्रीत पद्म है, साकार जागृत है और सर्व विशुद्ध है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। या शुक्ल परीक्षा होने के पहले वाला लेना, सातवें तक शुक्ल तीनों लेशा है, ये तीन शुभ लेशा है, यानी पीत पद्म सातवें तक है। सातिशय में शुक्ल होती है कि इनका कहना है पता नहीं मिले होनी चाहिए ऐसा रूल नहीं कह सकते हो। यानी आठवें के जाने के बाद शुक्ल होता है कि पहले से शुक्ल है, ये तो प्रश्न है ना। वही तो उसकी जो विशुद्धि है अनंत गुणी बढ़ रही है
और नियंत्र चढ़ेगा, वैसा नहीं कि बीच में जाएगा।
हाँ बिल्कुल है, तभी उनके उस समय उसकी लेशा कौन सी ये प्रश्न है। श्रेणी तो उसको नहीं कहेंगे, वो पर ये हम तो नियम नहीं बना सकेंगे कि वहाँ पीत पद्म नहीं है करके। हो सकता है कि वो तो पीत से पद्म, पद्म से शुक्ल में चला जाए। यहाँ कुछ ऐसा है, मैं सातिशय अप्रमत्त में भी हमने छठा सातवा देखा था ना कि नहीं, सातिशय होने के बाद भी हमने छठा सातवा देखा था ना। तो पता नहीं एक ही रेशा इतने काल तक रहेगी नहीं रहेगी, मुझे मुझे मान लो
रेशा होगी कि नहीं, बाकी सब अतिशय है, अपना पॉइंट है वो छोड़ के नहीं जाने। वो इसलिए सातिशय प्रमत का काल और शुक्ल रेशा का परावर्तन काल वो कितना है उसके साथ।
हाँ वो तो वही
तो पता चल जाए
अब कहीं केवल ज्ञान हो जाए तो हम आंसर दे देंगे।
अगर वो छोटा है तो निश्चित ही वो चेंज हो
जाएगी। तो यहाँ ही लिया है अप्रमत्त जीव साकार जागृत है सर्व विशुद्ध है, यानी उसके अपने लेशा में जब है तब सर्व विशुद्ध है, अपनी बात ले लो। वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है, अथवा जो दर्शनों का क्षपक जीव तदनंतर समय में कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि होगा, वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। क्योंकि हमने जो देखे थे ना तो असंख्यात गुणा निर्जरा वाले स्थान भी संयुतों से दर्शन होने के क्षपक वाले को ज्यादा लिया, यानी बोले वो नीचे के हुन स्थान में फिर भी उसके विशुद्धि ज्यादा है ऐसा लिया। आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध कृत्य वैदिक समय दृष्टि होगा उसके पूर्व समय में,
पहला
समय हाँ तब उसकी वहाँ विशुद्धि सर्व मैक्सिमम है ऐसा कहें। अंतिम कृतकृत्य होने के पूर्व समय, पूर्व समय आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर देव मिथ्या दृष्टि है। अब देखो यहाँ तो पीत और पद्मलेशा वाले जो है मनुष्य तीर जो देवायु बांधेंगे तो कुछ तो यानी अनेक वर्षों की बांधेंगे, मिनिमम 10,000 वर्ष की तो बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे।
ये तो देव
मेरा क्या कहना है, पीत लेशा मनुष्य तिरंज में भी है और देव में भी है, तो मनुष्य बांधेगा तो 10,000 वर्ष कम से तो नहीं बांधेगा मनुष्य तिरंज, और देव बांधेगी तो थोड़े वर्ष या तो पृथक मास भी बांध सकते हैं, ये कहना है। हमने तो अंतर्मूर्त भी देखा था ना, बौनवासी वगैरह अंतर्मूर्त की भी आई बात, तो यहाँ तो विलेशा की बात है, यहाँ समित्व की कहाँ बात है। देखो जो अन्यतर देव मिथ्या दृष्टि है लिखा है ना, तत्प्राज्ञ संकलेश परिणाम वाला है, जगन्य आबादा के साथ जगन्य स्थिति बंद कर रहा है, वो आयु कर्म के जगन्य स्थिति बंद का स्वामी है, वो हो ना अंतर्मूर्त, हमने पढ़ा भी था मेरे ख्याल से। सौधर्म कल्प के समान हमने देखा था, और सौधर्म कल्प में हमने देखा था अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। पेज नंबर 25 नीचे से पांचवी छठी पांचवी लाइन, ज्योतिषी और सौधर्म भवनवासी को ऊपर बताया था ना अलग,
कोई
हाँ 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 कोई पर्याप्त बांधेंगे ना, वो पर्याप्त वो बांधेंगे। देवों में भवनवासी की अलग बात की थी क्या, छब्बीस पर हाँ पीठलेशा में यही बात है। ये 25 पेज पर हमने देखा, अंतर्मूल प्रमाण। अब आगे बढ़ते हैं 46 पेज, वेदक सम्यक दृष्टियों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी पीतलेशा के समान है। अभी हमने देखा ना अप्रमत्तली ना सर्व विशुद्ध वाला, क्योंकि वेदक समय तो सातवें तक है, सातवें गुणस्थान तक, तो उसको लेना। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है, जो देव और नारकी जीव तत्प्राज्ञ संकलेश परिणाम वाला है, क्योंकि मनुष्य तीरें जो वेदक समय दृष्टि है वो देवायु बांधेंगे, और समय को सहित बांध रहे तो सौधर्म की तो बांधेंगे ही मिनिमम, पल्ले पृथक तो बांधेंगे, तो यहाँ इसलिए देव और नारकी को लिया, सॉरी हाँ वेदक समय दृष्टि देव नारकी तत्प्राज्ञ संकलेश परिणाम वाला है, वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। संकलेश प्रायोग यानी वो जगन्य में कितना हमने पृथक वर्ष लिया था, कितना लिया था संकलेश में, अति तीव्र संकलेश वाला नहीं लेना है, तद प्रायोग उपशम समय दृष्टियों में छह कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर सूक्ष्म सांप्रायिक जीव अंतिम समय में जघन्य स्थितिबंध कर रहा है, वह छह कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। द्वितीयोक्षम वाला लिया, मोहनीय कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर अनिवृत्ति उपशामक जीव अंतिम समय में जघन्य स्थितिबंध कर रहा है, वह मोहनीय कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। सासादन सम्यक्त्व में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर चार गति का जीव सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिबंध कर रहा है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थिति बनने का स्वामी है। अथवा संयम से गिरकर जो सासाधन समय दृष्टि हुआ है, मैं अभी कहने वाली थी, वह सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है।
संयम से जो गिरा है,
हाँ,
छठे से है, दूसरे में सात,
छठे से, सातवें से तो गिर नहीं सकता, छठे से। नहीं नहीं नहीं, औपशमिक समय तो मैं से आ सकता है ना, सासाधन में तो अन्यथा आ ही नहीं सकता। अपन वो औपशमिक सम्यक्त्व में से गिर कर आए। आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? सासाधन की बात चली। जो अन्यतर चार गति का जीव तत्प्रायग संकलेश परिणाम वाला है और आयु कर्म का जघन्य स्थिति बंध कर रहा है, वह आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों में चाहिए ना, क्या उन्होंने वो उसका आधा किया है बाहर। मिथ्या दृष्टियों में चाहिए, में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है और तदनंतर समय में सम्यक्त को प्राप्त होगा। उत्कृष्ट में हमने वो मिथ्यात्व को प्राप्त होगा दिया। वह सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। आयु बंध का कौन होगा जघन्य वाला? नितिन भाई, क्या क्या मिथ्या दृष्टि? मार्गणा कौन सी चल रही है?
गलत बोलते तो इसी गलत कल भी आया था
कल उन्होंने सही उत्तर दिया था, आपने सुनकर बोला था, इसलिए आज उन्होंने गलत उत्तर दिया तो भी सुनकर बता दिया। हाँ देखो,
सही उत्तर क्या है वो तो बताओ।
तीसरे गुणस्थान में आयु का बंधन नहीं होता है। हमने कितने बार देखा है ना, विशेषार्थ पहले सब मार्गणाओं में जघन्य स्थिति बंध के अध्याचित का कथन कर आए हैं, यहाँ उनके स्वामी का निर्देश किया है। इसलिए जहाँ जितना जघन्य स्थिति बंध कहा है उसे ध्यान में रखकर उक्त प्रकार से उसके स्वामित्व को गठित कर लेना चाहिए। हमने हर बार वो कितना कितना है वो तो दिया देखा है। इस प्रकार बंध स्वामित्व का कथन समाप्त हुआ। अब कहते बंध काल प्ररूपण, ये नंबर 13 है, 24 संयोग द्वार में से 13वां नंबर है, क्योंकि 11 तो वो सर्व नौ सर्व उत्कृष्ट जगन वो सब देखे थे हमने, पहला अध्याय से हुआ था और उसके बाद 12वां ये स्वामित्व का हुआ। अब बंध काल प्ररूपण यानी एक ही जीव की अपेक्षा बात चलेगी। क्या प्रश्न है? पेज 42 43 अच्छा। हाँ प्रश्न आपका क्या है? आदेश के सेकंड लास्ट लाइन देखो, पहले क्या बताया कि जहां तक मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं तो उनके लिए कहा समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। अब ऊपर मात्र समय दृष्टि ही है इसलिए कहते उनमें समय दृष्टि जीव आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध, आयु की जघन्य कब बंधेगी? जब उनके यथायोग्य संकलेश होगे तब। यानी समय दृष्टि जीव शब्द डालना था, बाकी आयु के जघन्य के लिए हर जगह तो यथायोग्य संकलेश परिणाम तो लिए ही उन्होंने। यानी उनके उनमें जो हो सकते हैं संकलेश उसको लेना वहां। अब बंद काल प्ररूपण, बंद काल का अर्थ क्या है हर्षण भाई? नहीं 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 कोई जो विशिष्ट बंद कर रहा है, उत्कृष्ट बंद कर रहा है, तो लगातार कितने समय तक करेगा? कोई जगन्य करेगा तो कितने समय तक करेगा? आठ समय कहाँ से लगा? देखो अभी सुनो, अभी पढ़ के फिर रखेंगे। बंद काल दो प्रकार का है, जगन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। उनमें से ओह से सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का कितना काल है, तो जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्भूत। जगन्य अभी उत्कृष्ट बंध के बारे में, जगन्य काल और उत्कृष्ट काल।
अच्छा,
कोई उत्कृष्ट बंध करेगा तो कितने समय तक करेगा? एक समय करके उसके अनुत्कृष्ट बंध होने लगेगा, ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमने क्या देखा, कोई ऐसे परिणाम है उसी परिणाम से उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है, या तो परिणाम चेंज हो जाएगा या उसी परिणाम से वो उसके नीचे वाला एक समय कम वाला भी बंद होगा, क्योंकि वो ओवरलैप होते हैं ना, या परिणाम भी चेंज हो सकते हैं, वही का वही परिणाम जरूरी नहीं। यानी परिणाम की बात आप आठ समय की कर रहे थे, परंतु वो भले परिणाम चेंज हुआ फिर भी उत्कृष्ट बंध जो अंतर्मुहूर्त तक हो सकता है, ये बात बताना चाहिए। अभी कोई शब्द मत डालो कांडक वांडक। ये यहाँ जो है स्थिति बंध के कारण वो जो परिणाम है ना,
यहाँ तो बात चल रही स्थिति बंध
का, उत्कृष्ट स्थिति बंध का लगातार काल, तो इतने अलग अलग परिणामों के द्वारा ये उत्कृष्ट स्थिति बंध हो सकता है। तो ये परिणाम कोई अन्य हो गया और उसके अन्य परिणाम अन्य बंद होने लगा, एक समय के लिए होकर अन्य बंद हुआ, क्यों हुआ? परिणाम चेंज हो गए, हो सकता है एक वही बंद होने लगा, क्यों? या तो वही परिणाम रहा कुछ समय के लिए, परंतु यह अंतर्मूर्त तक यह परिणाम नहीं रह सकता, परंतु उसके नीचे के अन्य अन्य परिणाम होते हुए भी इतना ही बंद होता है, तो अंतर्मूर्त तक पॉसिबल है। ये कोई यहाँ का परिणाम है, इस परिणाम से ये भी बंद हो सकता है, ये भी बंद हो सकता है, इसलिए एक समय भी घटित हो रहा होगा। यानी उसका कारण की बात मैं बता रही हूँ, यहाँ काल की बात नहीं। काल कितना है? उत्कृष्ट बंद एक समय के लिए भी होगा, अधिक से अधिक होगा तो अंत, उससे ज्यादा नहीं होगा, ये बंद काल की बात है। उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल और उत्कृष्ट स्थिति बंध का उत्कृष्ट काल, तो जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख। ये एक जीव की अपेक्षा बात चल रही हो, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल अंतर्मुख, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध एक समय के लिए नहीं होगा, जघन्य काल ही अंतर्मुख, और उत्कृष्ट अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। ओक की अपेक्षा बात चल रही है, क्यों ऐसा कहा? उत्कृष्ट क्यों नहीं हुआ?
उत्कृष्ट बांधा उसका तो अंतर्मूर्त के बाद ही वो फिर उसे बांध सकता,
ये तो हुई, पर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन क्यों कहा? हाँ, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी कौन देखा? संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त जीव वगैरह वगैरह सब, अब ये एक इंद्रिय में चला गया तो उत्कृष्ट बंध होगा कहाँ से? जब जाके पंचेंद्रिय में जन्म लेगा, उत्कृष्ट बंध करेगा, तब उसको उत्कृष्ट होगा। इसलिए इतने काल तक क्या किया उसने? अनुत्कृष्ट बंध किया। ये जब अंतर की बात आएगी, उत्कृष्ट का अंतर कितना, तो इतना बताएंगे। ये लगातार इतने काल तक अनुत्कृष्ट, ये तो हम ओह की अपेक्षा देख रहे हैं। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का कितना काल है? लगातार आयु बनती है तो कितने काल तक बनती है और वो भी उत्कृष्ट, तो कहते हैं जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। समझ में आई बात? क्योंकि पहले समय के लिए उसकी उत्कृष्ट होगी, बाद में वो लगातार हीन होती चली जाती है। यानी जघन्य काल भी एक समय और उत्कृष्ट काल भी एक समय, ये कह रहे हैं। और अनुत्कृष्ट स्थिति बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त तक तो बंदेगी। पहले समय में उत्कृष्ट है, बाकी तो अनुत्कृष्ट ही है, या कोई उत्कृष्ट आयु नहीं बंद रही है तो अनुत्कृष्ट ही बनती है। कितने समय तक? तो लगातार अंतर्मूर्त, उससे ज्यादा नहीं। इसी प्रकार मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शनी, भव्य अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवन के जानना चाहिए। ये क्यों इनको ही लिया यहाँ पर? क्योंकि ये जो हमने उत्कृष्ट कहा तो वो जघन्य उत्कृष्ट तो घटित होगा, परंतु अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जो उत्कृष्ट काल अनंत काल लिया है वो मिथ्यादृष्टियों में घटित होगा, वो असंयतों में घटित होगा, चक्षु दर्शनी में, भव्य अभव्य में घटित होगा। अब विशेषार्थ पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा और ज्यादा। स्थिति बंध पहले उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य के भेद से चार प्रकार का बतलाए हैं। इनमें यहां सर्वप्रथम एक जीव की अपेक्षा, ये महत्व की बात है, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध कम से कम कितने काल तक और अधिक से अधिक कितने काल तक होता रहता है, इसका विचार किया जा रहा है। यहां उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बतलाया। इसका कारण यह है, उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणाम अंतर्मूर्त से अधिक काल तक नहीं रहते। उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणाम अंतर्मूर्त से, यानी उत्कृष्ट स्थितिबंध के कारणभूत परिणाम, उसमें वो ईषक मध्यम भी आना। उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणाम, उसमें वो ईषत मध्यम वाले भी ले लेना उसमें। यानी वो ईषत मध्यम सहित वाले लेना, अंतर्मूल से अधिक काल तक नहीं रहे। उसमें भी उन परिणामों से उतने काल तक उत्कृष्ट स्थितिबंध होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। क्या कहते हैं? परिणाम वे रहे। अभी मैंने जो पार्टी पर समझाया था वो स्लेट पर, कि वो उत्कृष्ट रेंज जो है उसकी परिणामों की, उससे कम स्थितिबंध भी हो सकता है, इसलिए परिणाम वे ही रहे तो भी उत्कृष्ट ही स्थितिबंध होगा, ये कोई नियम नहीं है। यही बात,
उत्कृष्ट परिणाम तो उत्कृष्ट बंद ही होगा, उसको छोड़ के
सर्वोत्कृष्ट परिणाम नहीं लेना, वो पूरे रेंज लेनी, ईषद मध्यम वाली रेंज लेनी, तभी बात घटित होगी। अकेला उत्कृष्ट परिणाम, सर्वोत्कृष्ट परिणाम दो समय से ज्यादा नहीं रहेगा,
दो समय
ऐसा है ना,
दो
वो तो उसमें मध्यम वाले, वो तो योगों में लगाते थे, परंतु यहाँ तो अभी परिणामों में भी वैसे ही होगा।
हाँ,
अभी वो तो उन्हीं परिणामों की बात चल रही है ना, उसमें वो ईषक मध्यम वाले ऐड करना चाहिए, उसमें भी उन परिणामों से उतने काल तक उत्कृष्ट स्थितिबंध होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। किसी जीव के एक समय तक उत्कृष्ट स्थितिबंध होकर अनुत्कृष्ट स्थितिबंध होने लगता है और किसी के अंतर्मूर्त काल तक उत्कृष्ट स्थितिबंध होता रहता है, यही कारण है यहाँ सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। इन कर्मों के अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिबंध होकर पुनः वह अंतर्मूर्त काल के पहले कभी नहीं होता, ये महत्व की बात। एक बार उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ तो अंतर्मूर्त तक दोबारा नहीं हुआ। इसका उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, यानी एक बार उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ और फिर लगातार हुआ ही नहीं तो कितना हो सकता है उत्कृष्ट काल, तो अंतर अनंत काल है। इसका उत्कृष्ट अंतर है ना, अनुत्कृष्ट का काल कहेंगे, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, यानी एक इंद्रिय में जाके उत्पन्न हुआ है तो उसका वो उत्कृष्ट अंतर होगा। आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध एक समय तक और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध अंतर्मूर्त काल तक होता है, इससे अधिक काल तक आयु कर्म का बंध ही नहीं होता। यही कारण है कि आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। ये यहाँ कारण नहीं बताया, परंतु आपने कल जो पढ़ाया था ये पढ़कर बताया था कि पहले समय में बाद में वो स्थितिबंध घटता चला जाता है। पहले समय में उत्कृष्ट जब शुरुआत हुई है, मान लो तेती सागर का भी बंध रहा पहले समय में हुआ, फिर वो थोड़ा थोड़ा घटते चला जाएगा। यहां मत्य ज्ञानी आदि जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें आठों कर्मों का यह काल अविकल घटित हो जाता है, इसलिए इनके कथन को ओघ के समान कहा है, यानी कथन वैसा घटित होता है उनमें भी। अब अन्य मार्गणाओं की बात करेंगे। आदेश से नारकियों में वो विकल ने बिना उसमें कुछ रुकावट वो घटित हो जाता है बाधा बिना। आदेश से नारकियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओह के समान है, कितना है जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, अभी देखा ना, अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तैतीस सागर है। मयंक भाई ऐसा क्यों कहा? सातवें नरक का नारकी, उसने उत्कृष्ट स्थितिबंध किया ही नहीं किसी जीव ने, तो क्या करता रहा, अनुत्कृष्ट ही करता रहा, तो उसके मार्गणा ही तेती सागर के, तो वहां तक उसने अनुत्कृष्ट ही बंद किया। कैसे होगा अनुत्कृष्ट से बंद? हाँ, मार्गणा लिमिटेड है, मार्गणा सारी शांत है, ओग में तो वैसा नहीं था। यहाँ नारकी जीव मरने के एक समय पूर्व उत्कृष्ट किया, बाद में अनुत्कृष्ट किया, फिर मर गया, इसलिए एक समय का, एक समय नहीं तो अन्यथा घटित नहीं होता। उत्कृष्ट में तो एक समय से लेकर अंतर्मूर्त, अनुत्कृष्ट में एक समय कैसे हुआ समझ में आई ना बात, मरण के पीछे। आयु कर्म का काल ओह के समान है, यानी पहले एक समय के लिए उत्कृष्ट हो सकता है जघन्य और उत्कृष्ट, और बाकी अनुत्कृष्ट का जघन्य और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार सात पृथ्वियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, यह अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। आयु के बारे में नहीं बता रहे, सात कर्मों के बारे में बता रहे, यानी सात कर्मों के अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल, नहीं तो आप आयु में लगाओगे, ऐसा नहीं। तो अपनी अपनी स्थिति बताएंगे, पहले नरक से अनंत तक बोलो, पहले नरक का एक सागर, फिर तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सत्रह सागर, बाईस और तैतीस सागर। विशेषत यहाँ सामान्य से और प्रत्येक नरक में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहा है, सो इसका कारण यह है, जिस जीव ने पूर्व भव में उत्कृष्ट स्थितिबंध करने के बाद अनुत्कृष्ट स्थितिबंध किया, इसके बाद वो मरकर नरक में गया और वहां निरंतर अनुत्कृष्ट स्थितिबंध करता रहा। इस प्रकार अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाता है। आगे सर्वत्र अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार इन्हें जो जो मार्गणा है साधी शांत है उसमें ये बात लगाई गई। ये हो गया। तीर्यंचों में ओग के समान काल है, क्योंकि जो ओग के समान जो अनुत्कृष्ट का जो उत्कृष्ट काल जो हम असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहते हैं वो तीर्यंचों में ही घटित होगा, अन्यत्र तो नहीं होगा। पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक मनुष्य त्रिक सामान्य देव और सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सात कर्मों की उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य कर कर्मों के चाहिए, कर्मों की नहीं। क्या कहते हैं, सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मत, ये तो अन्यत्र जैसा है वैसा ही है। अब अनुत्कृष्ट का बताएं। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि उस पर्याय छूटने के एक समय पूर्व उन्होंने अनुत्कृष्ट किया था और पर्याय छूट गई तो एक समय घटित होता है। और उत्कृष्ट काल क्रम से पूर्व कोटि पृथत्व अधिक तीन पल्य किसके लिए बताए हैं, हाँ पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक के लिए, क्योंकि लगातार उसमें रहा ना वो जीव, तो हमने देखा था उसमें रहने का जो काल है उसमें उसने उत्कृष्ट स्थितिबंध किया ही नहीं, शुरू से अंत तक अनुत्कृष्ट ही किया। ख्याल में आती बात ही, तो कितना पृथक पल्ले में कितना लेंगे, पूर्व कोटि पृथक में कितना लेना
है?
पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में पंचेंद्रिय तीर्यंच हम देखेंगे, वो बिना देखे बताओ ना। हाँ बोलो बोलो। पंचेंद्रिय तीर्यंच लेना पहले, कैसे निकाला, संगी के भी और असंगी के भी, और तीन वेदों में लेना है तो हाँ, तो कितने हुए, आठ त्रिक चौबीस हुए, फिर एक अपर्याप्त का हो गया, फिर चौबीस हुए असंगी के, फिर संगी के भी ऐसे ही लेना, और अंतिम एक भाव तीन पल्ले वाला लेना बहुभूमि का। तो पृथक्त्व पल्य पृथक्त्व कोटि पूर्व कोटि पृथक्त्व और तीन पल्य, ये पंचेंद्रिय तीन त्रिक। मनुष्य त्रिक में पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य, परंतु यहाँ जो पृथक्त्व का प्रमाण है वो अलग होगा, क्योंकि मनुष्यों में संगी असंगी नहीं होते, मात्र संगी है, तो वहां तो हमने दोनों में घटित किए हैं। तो यहाँ 48 में से एक भाव तीन पल्य वाला रखा, 47 कोटि पूर्व। हाँ अभी उसमें मनुष्य नहीं में लेना है, तो मनुष्य शनि के आठ और आठ 16 हो जाएंगे, नहीं आठ ही होगी, बीच में नपुंसक वेद नहीं लेना, सात लेना, सात पूर्व कोटि और तीन पल्ले। नपुंसक वेद में 15 हो गए, वो तो बीच में अपर्याप्त वाला लेना है, या पर्याप्त वो कहेंगे, यानी मनुष्य पर्याप्त इतना कहेंगे क्योंकि गति के उतने, तो उसमें तो वो सात कैसे, मनुष्य पर्याप्त कहेंगे तो पुरुष और नपुंसक दोनों ही हो जाएगी, तो पहले आठ दुनी 16 और बाद में फिर 16 अपर्याप्त का लेना ही नहीं, पर्याप्त में नपुंसक और वो लेना, अपर्याप्त नहीं लेना, 15 हो जाएगी। फिर से समझ में आई बात, मनुष्य त्रिक के तीन भेद किए, मनुष्य ही जनरल देखेंगे तो 47 पूर्व कोटि और वो तीन पल्ले वाले, मनुष्य पर्याप्त जब कहते हैं तो नपुंसक वेदी और पुरुष वेदी हो गए, परंतु पर्याप्त लेना है, अपर्याप्त नहीं लेना। तो 16 में से 15 पूर्व कोटि लेना और एक तीन पल्ले वाला लेना। मनुष्य नहीं कहेंगे तो मात्र श्री वेद वाले आए, तो 7 पूर्व कोटि और एक तीन पल्ले वाला। अब कहते सामान्य देव 33 सागर और सर्वासिद्धि में भी 33 सागर तो घटित होता ही है। तो अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का ये जो उत्कृष्ट काल है वो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। आयु कर्म का ओग के समान है। देखो यहाँ अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय बतलाने का कारण यह है कि विवक्षित पर्याय में उत्कृष्ट स्थिति बंध किया और दूसरे समय में अनुत्कृष्ट स्थिति बंध करके मर कर अन्य पर्याय में चला। मरण का जो समय है यानी वहां का वो अंतिम समय है तो अनुत्कृष्ट किया, मर कर अन्य पर्याय में तो मार्गना बदल गई। इससे यहाँ सर्वत्र स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है। शेष कथन का अनुगम पूर्ववत है। अनुगम यानी उसको जो वैसा का वैसा ही समझना, पहले कथन जो करा है वो यहाँ पर भी लागू हो जाता है। हाँ मनुष्य की, हाँ पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक में, पंचेन्द्रिय तिर्यंच कहे तो हमने 96 में से 95 लिए, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त में, अभी उसमें भी संगी असंगी के लेना है और पर्याप्त है ना। 47 कैसे हुआ? 24 कैसे पर्याप्त में तो तिरंज चनी को नहीं लेना है? दो वेद को ही लेना कि तीनों वेद को लेना? उसमें लिया पर्याप्त तिरंज में लेना, मनुष्य पर्याप्त में नहीं लेना। तिरंज पर्याप्त में 47 लिए यानी तीनों वेद वाले लिए, अच्छा 8 3 24 और मनुष्य पर्याप्त में
23,
अच्छा यानी उन्होंने सभी वेद वाले लिए। कहीं कहीं दो दो अपेक्षा आती है, कहीं पर्याप्त मनुष्यों में यानी वो स्त्री वेदी वाले को नहीं लेते। हाँ जैन सिद्धांत कोष में लिए, जहाँ जो अपेक्षा है वैसे समझ लो। हाँ परंतु कहीं कहीं तीनों को लिया, हाँ क्योंकि खास धवला जयधवला में वो पर्याप्त में उसको नहीं लिया, पर्याप्त मनुष्य ने बस नपुंसक वेदी और पुरुष वेदी को लिया। तिर्यंचनी में अभी तिर्यंचनी संगी भी हुए असंगी भी तो 8 2 16 में से 15 हो जाएगा, 15 पूर्व कोटि और 3 पल्ले। संगी वाले को लास्ट में रखना। आगे बढ़ेंगे पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त जीवों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। क्योंकि वो उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हुआ, अनुत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट इसलिए कि उत्कृष्ट मरण की अपेक्षा हाँ ले सकते इसमें। आयु कर्म का ओग के समान है। विशेषण इन सब पर्यायों में एक जीव के रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसी से यह अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। परंतु उत्कृष्ट का उत्कृष्ट एक समय से अंतर्मूर्त कैसे होगा?
क्या पर्याय में रहने का अंतर्मूर्त है ना?
नहीं नहीं नहीं, वो पर्याय में रहने का काम नहीं, वो पर्याय
नहीं। उत्कृष्ट का कहाँ लिया है? उत्कृष्ट का भी जगन एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। अच्छा, यानी अंतर्मूर्त तक उसने उत्कृष्ट किया। एक इंद्रियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। एक इंद्रियों में रहते हुए उनका उत्कृष्ट काल है। देखो, इन्हें असंख्यात लोक के बाद एक जीव कोई है, वो तो अनुत्कृष्ट करता रहे लगातार, फिर बाद में एक इंद्रिय के योग्य उत्कृष्ट करेगा ही। ये तो हमने चारों गति में उत्कृष्ट मिथ्यात्व का देखा था असंख्यात लोक, वो बात अलग है। वहां नाना जीवन की अपेक्षा भी वो काल घटित हुआ था, यहाँ एक जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं। क्योंकि नाना जीवन की अपेक्षा कैसे घटित होगा, अनंत जीव है उसमें। तो अनुत्कृष्ट लगातार होता रहे तो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक होता रहे, यानी बाद में उत्कृष्ट बंद होगा ही होगा। एक जीव की अपेक्षा बात चल रही। बादर एक इंद्रियों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। ये असंख्यात, देखो ऐसा लेना, ये हमने देखा था ना, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण ये जो लिया है,
तो इसे देखा था ना, असंख्यात लोक प्रमाण काल जाने का चर्चा तो नियम से उत्कृष्ट बंद करेगा।
उसका अर्थ क्यों लिया वहां पर? यानी वो बादर में जन्म लेगा ही, अभी मुझे ख्याल आया। सूक्ष्म में रहने का लगातार कितना काल है? सूक्ष्म में लगातार रहने का काल असंख्यात लोक प्रमाण। अकेले सूक्ष्म पर्याप्त में अंतर्मूर्त, अकेले अपर्याप्त में अंतर्मूर्त, दोनों में असंख्यात। यानी वो बादर में आएगा ही आएगा, आएगा तो कहीं ना कहीं उसके तो बहुत कुछ बंद होगा ही कभी न कभी, ऐसा ले, यही ले सकते हैं ना। यहाँ इन जनरल बात की किसकी? अनुत्कृष्ट के। देखो, बादर एक इंद्रियों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल, सॉरी ऊपर ऊपर एक इंद्रिय इन जनरल की, उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण, यानी उसने उत्कृष्ट बंद किया ही नहीं, अनुत्कृष्ट का ही करता रहा। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म में घूमता रहा। वही तो बात हो रही है ना, वही क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो बादर में जन्म ही नहीं लिया उसने, सूक्ष्म में ही घूमता रहा। तो एक इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म में उत्कृष्ट होता है क्या बादर में? एक तो उसने बादर पर्याय नहीं प्राप्त की, तो असंख्यात लोग। हाँ, तो कभी न कभी वो तो करेगा। अभी देखो, बादर एक इंद्रियों में रहते हुए, बादर एक इंद्रियों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग, यानी बादर एक इंद्रियों में रहते हुए इतने काल के बाद वो तो उत्कृष्ट बांधेगा ही बांधेगा। ये अंगुल का असंख्यात वा भाग कहाँ और वो असंख्यात लोक कहाँ? अंगुल के असंख्यात भाग में कितने प्रदेश हो सकते हैं, इमेजिन करो, और एक लोक के असंख्यात गुणा करो। असंख्यात लोक है ना, लोक को असंख्यात गुणा किया तो असंख्यात लोक हुए, तो वो प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? इतने
संख्या
तो अंगुल के असंख्यात भाग में ही असंख्यात असंख्यात कल्प काल होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे, बादर एक इंद्रियों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण। बादर एक इंद्रिय इन जनरल की बात की थी, यानी बादर एक इंद्रिय में रहते हुए की बात है। क्यों, उसका अर्थ क्या है? इस मार्गणा का उत्कृष्ट काल, बादर एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल। बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, यानी लगातार बाकी बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों में रहा तो अधिक से अधिक कितने काल तक रहेगा? बोलो, 22,000 वर्ष तो एक भव हुआ, तो संख्यात हजार का ना, अनेक भव किए उसने, कभी जल का एक हुआ, कभी मरकर उसी पृथ्वी का एक में जन्म हुआ, तो संख्यात हजार वर्ष होगा। वही तो मैंने बोला, उसी पर्याय में उत्पन्न, 22,000 वर्ष में ही फिर दोबारा उत्पन्न हुआ, कभी 10,000 कभी 7,000, संख्यात हजार हो जाएगा। अभी उन्हें कोड़ा कोड़ी भी हो गए तो ही संख्यात कहेंगे। बादर एक इंद्रिय अपर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। हमने देखा था ना, एक अंतर्मूर्त में अधिक से अधिक कितने भव हो सकते हैं, हमने देखा था उसके बताए, तो अंतर्मूर्त से अधिक तो नहीं हो गए, यानी लगातार रहने का काल अंतर्मूर्त, लगातार अपर्याप्त 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 रहा तो भी अंतर्मूर्त से अधिक नहीं रहे। कितने देखे हमने एक इंद्रिय के? 66,000 भव एक इंद्रिय के हो सकते हैं, फिर भी यहाँ तो केवल अपर्याप्तकों के लिए है ना, तो अंतर्मूर्त है। सूक्ष्म एक इंद्रियों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त से अधिक नहीं हो, लगातार पर्याप्त पर्याप्त सूक्ष्म का करता रहे तो भी अंतर्मूर्त, लगातार अपर्याप्त अपर्याप्त करता रहे सूक्ष्म का तो भी अंतर्मूर्त। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, इन सबके उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है तथा इन सब में आयु कर्म का काल ओघ के समान है, यानी उत्कृष्ट का एक समय अनुत्कृष्ट का अंतर्मोक्ष। विशेषण खुद्दा बंध में एकेंद्रीय जीव का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल दिया है, और इसी प्रकार सूक्ष्म एकेंद्रीय का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण दिया है, किंतु यहाँ पर इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण और अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण बतलाया है। इसका कारण क्या है यह विचारणीय है। इन जीवों का खुद्दा बंध में जो उत्कृष्ट काल बतलाया है उतने काल तक सात कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थितिबंध नहीं होता, इसी से यह काल दिया है। शेष कथन सुगम है, क्योंकि हमने देखा था ना उत्कृष्ट जो असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद तो लौट कर उसमें आएगा ही नियम से। आगे सूक्ष्म पृथ्वी का एक आदि का जो अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कहा है वहां भी इसी प्रकार विचारना कर लेनी चाहिए। जहां वो असंख्यात लोक प्रमाण अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल बताया है, चूंकि एकेंद्रीय इन जनरल में रहने का काल असंख्यात लोक प्रमाण है, परंतु उसमें ओग में तो हमने अनुत्कृष्ट का कहा, परंतु एकेंद्रीय की अपेक्षा अनुत्कृष्ट नहीं हो सकता इतने काल तक। एकेंद्रीय की अपेक्षा उत्कृष्ट का बीच में होगा ही होगा, क्योंकि परिणाम कितने हैं वेरिएशंस असंख्यात लोक प्रमाण है, अन्य 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 परिणाम होते रहे फिर भी लौटकर उस परिणाम में आएगा। भले अन्य परिणाम बहुत बार भी हुए तो भी असंख्यात लोक प्रमाण काल में उसका फिर दोबारा उत्कृष्ट में आएगा। द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मुख, ये तो सब जगह घटित हो रहा है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष, ये उनकी स्थिति प्रमाण लिया। आयु कर्म का काल ओग के समान है। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त तथा त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। तो पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है अश्विन भाई? 2000 क्या? त्रस की कहो 2000 साल है ना, त्रस इन जनरल साधिक 2000 सागर। मैं वही उनको बता रही हूँ, उन्होंने पंचेंद्रिय की जो कही वो त्रस की है। पंचेंद्रिय कहेंगे तो 1000 सागर होगा ना, प्लस पूर्व कोटि पृथक यानी साधिक 1000 सागर। पंचेंद्रिय पर्याप्त में शत सागर पृथक पूर्ण यानी पृथक व सौ सागर, त्रस की शादी 2000 सागर और त्रस पर्याप्त में मात्र
सामान्य 2000
मात्र 2000 सागर। इसलिए अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण का आयु कर्म का काल ओग के समान है। एक समय के लिए उत्कृष्ट और बाकी अनुत्कृष्ट अंतर्मूर्त। पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक और वायु का एक जीव में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओग के समान है, एक समय से लेकर अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, इनमें रहने का उत्कृष्ट काल। इन चारों के बादरों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है, इनके बांदर पर्याप्त जीव में अनुत्कृष्ट सिद्धिबंध का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष। मैंने उनमें रहने का काल दिया, उनके सूक्ष्म जीव में अनुत्कृष्ट सिद्धिबंध का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। सूक्ष्म पर्याप्तकों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूल, क्योंकि मात्र पर्याप्त 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 भोग करता रहे तो अंतर्मूल होता है। वनस्पति कायिकों में उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का काल एकेंद्रीय के समान है, यानी वनस्पति कायिक इन जनरल लिया, वनस्पति प्रत्येक कायिकों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण और इनके पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। निगोद जीव में उक्त स्थितिबंध का काल एकेंद्रिय के समान है, इतनी विशेषता है। इनके बादरों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। कर्म स्थिति कितनी लेनी, सत्र कोड़ा कोड़ी सागर सामान्य लेनी। हाँ हाँ, क्योंकि ढाई पुद्गल प्रमाण एक जीव रहेगा तो कहते हैं कि उसमें वो अनुत्कृष्ट ही होता रहेगा, क्या बीच में उत्कृष्ट भी होगा? ये बात है ना, तो बीच में उत्कृष्ट होगा उस अपेक्षा से अनुत्कृष्ट का काल कहेंगे। इसके बाद तो उत्कृष्ट होगा ही बीच में, जैसे हमने एकेंद्रिय में रहने का काल असंख्यात पुद्गल प्रारब्ध, फिर भी एकेंद्रिय इन जनरल का अनुत्कृष्ट का लगातार काल कितना है तो असंख्यात लोग, वो जैसे देखा वैसे निगोद में रहने का काल ढाई पुद्गल प्रारब्ध है, परंतु कि उनमें एकेंद्रिय के समान बताए उन्होंने, हाँ अनुत्कृष्ट का असंख्यात लोग एकेंद्रिय के समान बताए, और अकेले बादर में बादर निगोद में देखेंगे तो अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण। हाँ, तो बाद में तो उत्कृष्ट बंध होगा ही होगा, ये बात बताना है। ये बीच में उसको उत्कृष्ट बंध होगा ही, यानी मात्र वो उस पर्याय में रहता है इसलिए वो अनुत्कृष्ट ही करता है ऐसा नहीं है, उस पर्याय के योग्य उत्कृष्ट भी होगा ही। वो कब हो सकता है तो इतना लंबा अनुत्कृष्ट को कहेंगे। सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्याप्त और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवों को छोड़कर, अभी सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त और सूक्ष्म निवोद अपर्याप्त एक ही है, एक्चुअली सूक्ष्म वनस्पति का एक और सूक्ष्म निवोद अपर्याप्त ऐसा कहना चाहिए। ऊपर देखो सूक्ष्म वनस्पति इतना कहने पर पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए, और सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त ऐसा है, यानी सूक्ष्म वनस्पति में मात्र निगोद ही होते, सूक्ष्म वनस्पति में पर्याप्त होते ही नहीं, सॉरी कौन से पर्याप्त नहीं, मुझे प्रत्येक कहना है, फिर से सुन लो। सूक्ष्म वनस्पति का एक कहने से निगोद है, तो निगोद और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, ऐसे दो भेद किए, सूक्ष्म निगोद इन जनरल और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त। ख्याल में यही बात, तो दो ही लगाना है, सूक्ष्म वनस्पति का एक इतना ही लेना, कुछ नहीं लिखो वहां, अपर्याप्त निकाल दो वहां पर, और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, यानी दूसरी भाषा में सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्याप्त। पर्याप्त अपर्याप्त लिखेंगे तो वो दोनों भेद अलग हो गए। एक बार हमने इन जनरल लिया, दोनों को मिलाया हुआ और अकेले अपर्याप्त। देखो ऊपर लिखा है ना सूम वनस्पति और सूम निगोद उपजत्तम मोत्तुन, शेष अपर्याप्त जीवों में उक्त स्थिति बंध का काल पंचेंद्रिय अपर्याप्त कों के समान है।
शेष अपर्याप्त तो बात है, शेष अपर्याप्त में बादर अपर्याप्त
पंचेंद्रिय अपर्याप्त कों के समान है ऐसा लिखा।
अंतर्मूर्त
अंतर्मूर्त तो होता ही है, फिर भी सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त को क्यों छोड़ा? क्योंकि निगोद में विशेषता क्या बताई उन्होंने बादरों में?
निगोद सूक्ष्म असंख्यात लोग पर्याप्त अंतर्मूल।
देखो ऊपर उन्होंने वनस्पति कायिकों में एक इंद्रिय के समान बताया, इसी में चार पांच लाइन ऊपर वनस्पति प्रत्येक कायिक में अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण लिया, वो प्रत्येक के पर्याप्तकों में संख्या हजार वर्ष लिया, निगोद में एक इंद्रिय के समान है इतनी विशेषता है कि बादर निगोद में उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण, इसलिए यहां सूक्ष्म वनस्पति कायिक को छोड़ा, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त को छोड़ा। तो कर्मस्थिति कर्मस्थिति बताइए था ना ऊपर। रायु का काल लोक के समान सर्वत्र लिया उसको, मोत्तुन शेषम उपजत पंचेंद्रिय उपजत भंगो आयु होगा। पंचेंद्रिय अपर्याप्त अभी हमने ऊपर देखा था, अंतर्मुख हाँ उनको छोड़कर अन्य हाँ देखो देखो सूक्ष्म केंद्रीय में कितना लेना है सम का काल है, ये 49 पेज पर जो बताया है। हाँ तो सूक्ष्म अन्य सूक्ष्म केंद्रीय को लिया था, अंगुल का संख्या तो हाँ ये क्लियर नहीं हो रहा यहाँ पर। वो दो का कितना है प्रश्न?
सूक्ष्म में रेले का काल तो अपने
सूक्ष्म में कहा असंख्यात लोक, अंगुल का असंख्यात प्रभाव सूक्ष्म एक केंद्रीय में सूक्ष्म निगोद का ठीक सूक्ष्म निगोद
सूक्ष्म सामान्य असंख्यात लोक पर्याप्त अंतर
और बाकी अपर्याप्त में रहने का तो अंतर्मूर्त ही होता है ना। सूक्ष्म में असंख्यात लोग होगा परंतु सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त में
अंतर
हाँ अपर्याप्त में अंतर
नहीं होता। सामान्य मध्ये असंख्यात लोक होते गीत असंख्यात होते पण अंगोल तर असंख्यात घेतल्या प्रत्येक ठिकाणी
सूक्ष्म एकेंद्रिय में हमने अंगुल का संघात्व भाग लिया उसमें रहने का काल केवल नहीं लेना
पर यहाँ पे जो सूक्ष्म अपर्याप्त है उसमें रहने का उत्कृष्ट काल कितना है
अंतर्मूर्त
अंतर्मूर्त तो उसको बाकी के साथ लेना चाहिए ना बाकी का भी तब हमने अंतर्मूर्त लिया
कल हम इसकी चर्चा करेंगे कल करेंगे अभी समय हो गया था इसको फिर दोबारा देखेंगे कल और उसका वो ये भी देखेंगे पहले वाला आधा नहीं मतलब केवल कितना होता है वो देख के कुछ फायदा नहीं है ना जावानी के ज्ञान दे सूजे नु कालु सोवाणी मस्तक नमो सदा देतव